लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं, ताकि हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उनके पवित्रतम हृदय के साथ व्यक्तिगत संबंध द्वारा सांत्वना मिले, जिससे हम विश्व के सब लोगों के प्रति करुणावान बनना सीखें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्णन का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। कुछ लोग अपने पिता को अभिशाप देते और अपनी माता का कल्याण नहीं चाहते। कुछ लोग अपने को शुद्ध समझते किंतु उनका दूषण नहीं धुला है। कुछ लोगों की आंखें घमंड से भरी हैं और दूसरों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखती हैं। कुछ लोगों के दांत तलवार जैसे हैं और जबड़े छुरी जैसे। वे देश के दीनों और जनता में से दरिद्रों को फाड़कर खा जाते हैं। श्रोताओ, ये थी 30वें अध्याय के 11 से लेकर 14 तक के पदों में निहित आगूर की सूक्तियां। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय की 10वीं सूक्ति में कठोर, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण आलोचना से बचने का संदेश दिया गया है, ताकि लोग यह समझ लें कि किसी के विषय में बुरा सोचना या कहना सरासर गलत है, विशेष रूप से किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ बकवाद करना। इसी तरह 11वीं सूक्ति में माता पिता के सम्मान और आदर का आदेश दिया गया है, इसलिए कि ऐसी पीढ़ी की भी कमी नहीं जो अपने पिता को कोसती हो। जबकि ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों में से चौथा नियम कहता है कि माता पिता का आदर किया जाए। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 6वें अध्याय के 2 पद में संत पॉल याद दिलाते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहो। वस्तुतः जो लोग अपने माता पिता के खिलाफ घृणित कार्य करते हैं, जैसे कि उनकी संपत्ति का लालच कर हेर फरेब से उसे समेटने का निर्लज्ज काम करते हैं, वे माता पिता के प्रति अपने दायित्वों को नकारते और ईश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं। आगुर की अंतिम सूक्तियों में स्वतः को शुद्ध बताने वाले घमंडी और दरिद्रों का शोषण करने वालों को फटकार बताई गई है। ऐसी पीढ़ी जो खुद को शुद्ध बताती है किंतु वह हर काम करती है जो गंदा है, वह पीढ़ी जो घमंड और अहंकार में चलती है वह ईश्वर के प्रतिरोध का अनुभव करेगी, जबकि विनम्र लोगों पर ईश्वर का अनुग्रह होगा। आगुर की अंतिम सूक्ति में दरिद्रों के शोषण के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। क्रूर, उत्पीड़क, कायर होते हैं। वे अपनी मनमानी केवल वहीं करते हैं जहां प्रतिशोध की शक्ति बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती है। वे गरीबों को खा जाते हैं। ऐसे क्रूर और दुष्ट लोग कभी भी ईश्वर की दया और कृपा के पात्र नहीं होंगे।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय में आगुर द्वारा रचित संख्यात्मक सूक्तियों को पढ़ें और समझें। इस अध्याय के 15 से लेकर 33 तक के पदों में हम संख्यात्मक सूक्तियों को पाते हैं। इनमें व्यक्ति को सदाचारी जीवन जीने के लिए किन कार्यों को करना चाहिए और किन कर्मों का परित्याग करना चाहिए, उन्हें ही गिनाया गया है। इसीलिए इन सूक्तियों को संख्यात्मक सूक्तियां कहा गया है। 15वां पद इस प्रकार है, जोंक की दो बेटियां हैं, वे दे दो चिल्लाती हैं। तीन चीजें कभी भी तृप्त नहीं होती और चार कभी बस नहीं कहती। श्रोताओं, यहां लेखक ने जोंक का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जोंक एक खून चूसने वाला प्राणी है जो अपने शिकार पर चिपक कर उसे काट खाता है। इसके दोनों सिरों पर दो चूसने वाले अंग पाए जाते हैं। वस्तुतः लेखक ने इस रूपक का प्रयोग इसलिए किया होगा क्योंकि जोंक फिलिस्तीन के सभी बासी पानी में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा पानी पीने वाले घोड़ों के नथनों और तालू में चिपक कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस सूक्ति में यह परामर्श अंतर्निहित है कि जिस तरह घृणित जोंक को और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाना चाहिए, उसी तरह बुद्धिमान को भी लालची लोगों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और उनसे छुटकारा पाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग जो न तो कभी तृप्त होते और न कभी बस कहते, ऐसे लोगों से सावधान रहकर सदाचार व्यक्ति अपने जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है। तीन और चार संख्याओं से तात्पर्य है कि सूची विशिष्ट है लेकिन संपूर्ण नहीं हो सकती। फिर 30वें अध्याय के 16वें पद में लेखक बताता है कि अधोलोक क्या है। कहता है, अधोलोक बांझ का गर्भाशय, पानी की प्यासी भूमि और आग है जो कभी बस नहीं कहती। श्रोताओ, आग, पानी और प्यासी भूमि के रूपक इसलिए लिए गए क्योंकि ये तत्व कभी तृप्त नहीं होते। बांझ कभी तृप्त नहीं होती, वैसे ही जैसे पृथ्वी लगातार अपने ऊपर डाले गए पानी को सोखती रहती है और जब तक जलने के लिए ईंधन है तब तक आग जलती रहती है। वस्तुतः यहाँ लेखक ने कहना चाहा है कि बंजर गर्भ अपने खालीपन का दर्द महसूस करता है और अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। बांझ महिलाएं बच्चों की सबसे अधिक चाहत रखती हैं। बाइबल धर्म ग्रंथ में भी हम राखेल और हन्ना जैसी महिलाओं का उदाहरण पाते हैं जो कितनी अधीर और कितनी जिद्दी थीं। लेखक कहता है कि ये तीन चीजें कभी भी बस नहीं कहती। आगे 30वें अध्याय के 17वें पद में आगुर कहता है, वह आंख जो अपने पिता की हंसी उड़ाती है और माता की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे घाटी के कौवे फोड़ेंगे, उसे गरुड़ के बच्चे खा जाएंगे। श्रोताओ, यहां इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है कि माता पिता का मजाक उड़ाना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना मूर्खता है क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है और पीढ़ियां संघर्ष में पड़ जाती हैं। ऐसे लोगों के लिए बद से बदतर सजा निर्धारित की गई है। श्रोताओ, आंख मन की भावना को प्रकट करती है। यह आगुर ने एक ज्वलंत काव्यात्मक वर्णन का उपयोग करके यह दर्शाना चाहा है कि अपनी मूर्खता और अवज्ञा में अंधे रहने वाली संतान का विनाश वैसे ही होगा जैसे कौवे और गिद्ध अपने शिकार को फोड़कर खा जाते हैं। यह तो हम भी जानते हैं कि घाटियों या नालों के कौवे सबसे अधिक भूखे होते हैं और गिद्ध शवों को सूंघकर सबसे पहले उनकी आंखें निकाल लेते हैं। माता पिता का सम्मान न करने वाली, उनका मजाक उड़ाने वाली और उनकी आज्ञा का पालन न करने वाली युवा पीढ़ी को चेतावनी देकर आगूर कहता है कि वह समय रहते अपना सुधार कर ले।
मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, न ये मस्तक झुकाया कभी, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, जीवन बदलने लगा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने स्पेन के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत में अपने परमाध्यक्षीय काल के उद्घाटन के अवसर पर राजा फिलिप एवं रानी लेतिसिया की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री ने पोप लियो को स्पेन आने का अपना निमंत्रण दोहराया। बुधवार को पोप लियो ने स्पेन के प्रधानमंत्री संकेज पेरेज कस्तेंजन से फोन पर बात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि फोन पर बातचीत के दौरान पोप ने अपने परमाध्यक्षीय काल के उद्घाटन के अवसर पर राजा फिलिप एवं रानी लेतिसिया की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। पोप और स्पेन के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातें की, जिनमें आप्रवासी संकट, वर्तमान में जारी संघर्ष के समाधान के लिए सेतु के निर्माण की आवश्यकता एवं मानव प्रतिष्ठा की रक्षा आदि मुद्दे थे। प्रधानमंत्री श्री पेड्रो ने पोप लियो को स्पेन आने का निमंत्रण दोहराया, जिसके बाद उन्होंने जून में स्पेन के सेविले में विकास के लिए वित्त पोषण पर होने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर टिप्पणी की। रोम के पुरोहितों का वैटिकन में स्वागत करते हुए पोप लियो 14वें ने उनके विश्वास एवं सेवा के लिए उनकी सराहना की, उनसे कलीसिया से प्रेम करने और अनुकरणीय बनने का आग्रह किया और जोर देकर कहा, आप सभी ईश्वर की दृष्टि में एवं उनकी योजना की पूर्ति में मूल्यवान हैं। पोप लियो 14वें ने बृहस्पतिवार को रोम धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मैं आपको स्वर्ग राज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने, प्रतिदिन के परिश्रम प्रेरिताई को बड़ी उदारता के साथ संपन्न करने और उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनको आप चुपचाप पूरा करते हैं और कभी कभी दर्द एवं गलत फहमी के साथ। पोप ने कहा कि वे सभी का स्नेह एवं मित्रता के साथ स्वागत करते हैं और बतलाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं ताकि उन्हें और करीब से जान सकें और उनके साथ मिलकर चलना शुरू कर सकें। उनकी विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर गौर करते हुए संत पापा ने जोर देकर कहा, आप ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं और उनकी योजना को साकार कर रहे हैं। रोम थम प्रांत उदारता एवं एकता में कार्य करता है तथा आप में से प्रत्येक जन के सहयोग से धर्माध्यक्ष के साथ अनुग्रह के बंधन में तथा ईश्वर के सभी लोगों के साथ फलदायी सह जिम्मेदारी में यह अपना मिशन पूरा कर रहा है। संत पापा ने याद किया कि रोम धम प्रांत वास्तव में खास है क्योंकि यहाँ कई पुरोहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और उन्होंने कहा, इसी सार्वभौमिक दृष्टिकोण से जो रोम प्रदान करता है, मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। पहला बिंदु जो मेरे दिल के बहुत करीब है वह है एकता एवं समन्वय। पोप लियो ने जोर देकर कहा कि प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पुरोहित केवल उनके साथ और आपस में एकजुट होते हैं तो वे फलदायी हो सकते हैं और दुनिया को एक विश्वसनीय गवाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुरोहित को समन्वय का व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि वह इससे सबसे पहले खुद जीता और इसे लगातार विकसित करता है। हम जानते हैं कि यह समन्वय आज एक सांस्कृतिक माहौल से बाधित है जो अलगाव या आत्म संदर्भ को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी इन जालों से मुक्त नहीं है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन की दृढ़ता को खतरे में डालता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि हर कोई अपनी प्रेरिताए में शांति प्राप्त कर सके, लेकिन इसके लिए मैं आपसे पुरोहिती भाईचारे में एक नए सिरे से प्रयास करने की सलाह देता हूँ जो एक ठोस आध्यात्मिक जीवन, प्रभु के साथ मुलाकात और उनका वचन सुनने में निहित है। उन्होंने कहा कि इस धर्म प्रांत के भीतर एकता को प्रतिबद्धता में तब्दील किया जाना चाहिए क्योंकि साथ साथ चलना हमेशा सुसमाचार के प्रति निष्ठा की गारंटी है। इसके बाद संत पापा ने दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालते हुए पुरोहितों से कहा, हम अपने स्वभाव की सीमाओं से अवगत हैं और प्रभु हमें गहराई से जानते हैं, लेकिन हमें एक असाधारण अनुग्रह प्राप्त है। हमें एक अनमोल खजाना सौंपा गया है जिसके हम सेवक हैं और सेवक से वफादार होने की अपेक्षा की जाती है। पोप ने पुरोहितों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आइए हम एक बार फिर गुरु के आह्वान से आकर्षित हों ताकि आरंभिक प्रेम को महसूस कर सकें और जी सकें जिसने आपको मजबूत विकल्प चुनने और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंत में कहा, इस कलीसिया से प्रेम करें, इस कलीसिया में रहें, कलीसिया बनें, भले चरवाहे सुंदर दुल्हे से प्रेम करें जो किसी को कभी धोखा नहीं देता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। बिखरी हुई भेड़ों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे भी आएं, कि वे भी पहचानें, कि वे भी प्यार करें ताकि एक झुंड और एक चरवाहा हो। 14 और 15 जून को आयोजित खेल जगत की जयंती हमें लचीलेपन और भाईचारे के स्रोत के रूप में खेल की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। वैटिकन प्रेस कार्यालय में खेल जगत की जयंती की प्रस्तुति के अवसर पर कार्डिनल टोलेंटिनो डी मोंडेका ने कहा, खेल हमें गिरने के बाद उठना सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे विश्वास हमें मुश्किल समय में सहारा देता है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन रविवार 15 जून को संत पेत्रुस महागिरजा घर में पोप लियो 14वें द्वारा क्रिस त्याग के अनुष्ठान से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए पूर्व इतालवी ओलंपिक तैराक नवेला कैलिगरिस ने कहा, एक खिलाड़ी के लिए हारना महत्वपूर्ण है, यह वह क्षण होता है जब वास्तव में प्रकट होता है कि वह कौन है, वह कैसे ठीक हो सकता है, वह क्या सीखता है और वह अपने अगले लक्ष्य को कैसे परिभाषित करता है। कैलिगरिस ने कहा, हर खिलाड़ी की एक अनूठी कहानी होती है, परिणाम अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है यात्रा, उन्हें किस चीज ने प्रेरित किया, पीड़ा, असफलताएं और जीत। लातिनी अमेरिका की कलीसिया ने न्याय संगत पारिस्थितिक परिवर्तन का आह्वान किया है। वैटिकन के लिए कोलंबिया दूतावास ने एक मंच का आयोजन किया जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि लैटिन अमेरिका में कलीसिया किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास को आकार दे रहा है। कोलंबिया और वैटिकन के बीच 190 वर्षों के राजनयिक संबंधों की यादगारी में रोम में परमधम्मपीठ ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय ने जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर लैटिन अमेरिकी कलीसिया के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए कोलंबिया दूतावास के साथ एक मंच की मेजबानी की। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।